कविता संबंधी शुक्ल जी के विचार एवं तो उनकी समुची कृतियों में फैले हैं, परंतु उनके कविता क्या है शीर्षक निबंध में जो उनके सुदीर्घ काव्य चिंतना का प्रतिफल है, उन्हें एकत्र रूप में देखा जा सकता है। यहाँ उन्होंने कविता को भाव योग की संज्ञा दी है और उसे हृदय की मुक्तावस्था का साधन कहा है। कविता यूं तो शब्दों का विधान ही है, पर शब्दों का जो विधान हृदय की मुक्तावस्था का साधन होता है वही उच्च कविता की संज्ञा पाता है। हृदय की मुक्त अवस्था में व्यक्ति वैयक्तिक स्वार्थ संबंधों के ऊपर उठकर अपने को शेष सृष्टि में फैला देता है। वह मनुष्यत्व की ऊंची से ऊंची कक्षा में इसी साधना के तहत पहुंच सकता है। कविता इस प्रकार उच्चतम मनुष्यता को उपलब्ध करा सकती है। शुक्ल जी की कविता बुनियाद मानवीय अनुभूतियों में देखते हैं। अनुभूत विहीन कविता को कोरा चमत्कार मानते हैं। इन अनुभूतियों का संबंध जीवन के जितने ही सजीव कार्य व्यापारों से होगा, कविता उतनी ही प्राणवान होगी। कविता का विषय उनके लिए इस लोक जीवन के अलावा और कोई नहीं है। लोकोत्तर अनुभूतियों को वे कविता के दायरे में नहीं मानते, वे ज्ञान प्रसार के भीतर ही भाव प्रसार को स्वीकार करते हैं। इसके अलावा वे कविता को मात्र विचार भी नहीं स्वीकार करते। कविता के भीतर वे मुख्यतः मनुष्य के इंद्रिय बोध को और भाव जगत को मानते हैं। विचारों के स्थित कविता में इनके तहत और इनकी संश्लिष्टता में ही हो सकती है। कोरा विचार कविता नहीं कहा जा सकता, और वह कुछ भी हो। शुक्ल जी कविता में मात्र अर्थ ग्रहण को भी स्वीकार नहीं करते। कविता में उनके अनुसार बिंब ग्रहण अपेक्षित है। कविता में जो कुछ व्यक्त होता है वह चित्रों और बिंबों में व्यक्त होना चाहिए, सपाट रूप में नहीं। तभी कविता अपनी समुची अस्मिता के साथ आस्वाद्य बन सकेगी। कविता क्या है निबंध में व्यक्त शुक्ल जी के ये विचार इस मायने में महत्वपूर्ण है कि उनके माध्यम से हम उच्च काव्य को घटिया या सतही काव्य से अलगा सकते हैं। कविता संबंधी शुक्ल जी के कुछ स्पष्ट पूर्वाग्रह भी हैं, जिन्हें जान लेना भी जरूरी है। उदाहरण के लिए रस और रसानुभूत संबंधी शुक्ल जी की अवधारणा प्रबंध काव्यों के जितना अनुरूप है मुक्तक रचनाओं के नहीं। कविता का विभाव पक्ष अपने पूरे समारोह के साथ प्रबंध कविता में ही आ सकता है, मुक्तक में नहीं। इस नाते शुक्ल जी की व्यावहारिक समीक्षा में मुक्तक रचनाकारों के साथ पूरा न्याय नहीं हुआ है। छायावादी कविता के बड़े रचनाकार भी उनसे पूरा न्याय नहीं पा सके हैं। एक बात और भी है, शुक्ल जी की रस संबंधी मान्यता के साथ अविभाज्य रूप से उनका लोकमंगल वाला सिद्धांत भी जुड़ा हुआ है। लोकमंगल के अंतर्गत वे आनंद के प्रयत्न को उसके उपभोग पक्ष की तुलना में वरीयता प्रदान करते हैं, और इस प्रयत्न पक्ष का संबंध पुनः प्रबंध काव्यों से ही बनता है। कारण उन्हीं में एक प्रशस्त कथा वैविध्यपूर्ण मानव चरित्रों तथा मानव जीवन के नाना काव्य व्यापारों के साथ चलती या चल सकती है। वहीं लोक रक्षण की उस धारणा से भी जुड़ सकते हैं जो शुक्ल जी की लोक रंजन से पहले प्रिय है। मुक्तक काव्य प्रायः लोक रंजन के काव्य होते हैं, और इस कारण सूर जैसे रचनाकार जिन्होंने कृष्ण का लोक रक्षक रूप न लेकर प्रेममय रूप लिया है, तुलसी के आगे अपने संपूर्ण काव्यत्व के बावजूद शुक्ल जी की निगाह में छोटे हो जाते हैं। जब सूर का यह हाल है तब कबीर कहाँ होंगे, इसकी कल्पना की जा सकती है। बहरहाल ये एक बड़े समीक्षक के बड़े पूर्वाग्रह हैं, और इनको लिए हुए भी शुक्ल जी हमारे समय के सबसे समर्थ समीक्षक की हैसियत रखते हैं। संप्रत हम इस विवाद में नहीं उलझना चाहेंगे कि कबीर की भक्ति सही भक्ति है जैसा कि आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी का कहना है, या वह सही भक्ति नहीं है जैसा कि शुक्ल जी के विचार प्रतिपादित करते हैं। हमने अपने पिछले निबंध में कबीर की भक्ति को सराहा है और उसे उनकी सृजना का सबसे उज्ज्वल अंग माना है। वहाँ कबीर अपने जाने माने स्वभाव के विपरीत विनम्र और आर्त हैं, कोमल और बहुत संवेदनशील हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उनके इस भक्ति भाव को और भक्तिजन्य उनके उद्गारों को बड़ी आत्मीयता के साथ विवेचित किया है। हमें भी कबीर की भक्ति के ये उद्गार बावजूद इस पचड़े में पड़े बिना कि वे अव्यक्त के प्रति हैं या अव्यक्त के प्रति, बिल्कुल उसी परंपरा में लगते हैं जिस परंपरा में तुलसी की विनय पत्रिका में उनका आत्मनिवेदन है। वे दिन कब आवेंगे माई, जा कारण हम देह धरी है मिलबो अंग लगाई। अहु अरदास दास की सुनिए तन की तपन बुझाई, कहे कबीर मिले साईं मिलकर मंगल गाई। या सूर मीरा के यहाँ ढेरों पद, कबीर के ए राम समर्थक निरुपाधिक और निर्गुण भी नहीं है। कबीर ने ए यथा प्रसंग उन पर कुछ गुण आरोपित भी किए हैं, जैसे हर जननी में बालक तेरा। सबसे बड़ी बात है प्रपत्ति की, जिसे शुक्ल जी भी भक्ति की चरमावस्था मानते हैं और हजारी प्रसाद द्विवेदी भी। बालम आयो हमारे गेहरे, तुम बिन दुखिया देहरे। शुक्ल जी भी अहैतुक भक्ति को उत्तम भक्ति मानते हैं और द्विवेदी जी भी। कबीर की भक्ति यही अहैतुक भक्ति है, यही शरणागत की भक्ति है। भक्ति में अहंकार का कहीं कोई स्थान नहीं, आराध्य के समक्ष सर्वस्व समर्पण ही उसकी चरितार्थता है। दोनों आचार्यों को यह स्वीकार है और कबीर के यहाँ भक्ति का यही रूप है, अर्थात शीश काट कर जमीन पर रख देना, तब देहरी पार करके भीतर जाना। कबीर यह घर प्रेम का खाला का घर न आए, शीश उतारे भूई धरे सो घर बैठे मां आए। ऐसी स्थिति में महज सिद्धांत के स्तर पर उलझे रहने की जरूरत नहीं है। कबीर की भक्ति भावना से संबंधित पदों में वह कविता है जिसे शुक्ल जी ने तुलसी की विनय पत्रिका में पहचाना और उजागर किया है। हम जानते हैं कि कबीर पंडित नहीं थे, अपढ़ थे। काव्य शास्त्र की बारीकियों से भी उनका परिचय नहीं था। उनमें यदि कुछ था और भरी पूरी तरह से था तो वह अपने साईं के प्रति उत्कट लगाव ही था, जिसकी गहरी अनुभूति से प्रेरित होकर वे जब तब कुछ कह उठते थे। और चूंकि वह उनके सरल सात्विक और निर्मल मन की पुकार होती थी, अतएव बरबस कविता बन जाया करती थी। जिसके पास भाषा का ज्ञान नहीं, शास्त्र का ज्ञान नहीं, कविताई का ज्ञान नहीं, वह अनुभूत की इसी पूंजी के बल पर ही तो कुछ कहने का साहस करेगा। कबीर की ये भक्ति परक वाणियां और पद उनके इसी सहज साहस का उदाहरण है, जहां वे बिना प्रयास कविताई की जमीन पर पहुंच गए हैं। पहुंच ही नहीं गए, दूसरे तमाम भक्तों के साथ पहली पांच के हकदार भी बन गए हैं। आखिर मीरा के पदों में भी क्या है, अलंकारों की घटा, वाणी का अनूठा विन्यास, कल्पना की किमियागिरी, या फिर महज एक भाव प्रेरित हृदय दर्द की गहरी अनुभूति, व्यथा की एक मार्मिक कथा। न कोई आयास और न ही कोई सजावट, यह दर्द ही है जो मीरा के कंठ से कविता बनकर फूटा है और अपने प्रभाव में कविताई का दावा करने वाले दूसरे तमाम लोगों के बनाऊ और जड़ाऊ काव्य की तुलना में न केवल बेधक और झकझोर देने वाला है, वरन टिकाऊ और मूल्यवान भी है। जिस तरह मीरा की रची पंक्तियां पढ़ने वाले के हृदय में दर्द की एक गहरी लकीर खींचती चली जाती हैं, उसी प्रकार कबीर भी जब कहते हैं, नैना नीझर लाइया रहट बसे निस जाम, पपिया ज्यू प्यू प्यू करें कबरे मिलोगे राम। अंखणिया झाई परी पंथ निहार निहार, जी बढ़िया छाला पड़या राम पुकार पुकार। कै बिरहन हूँ मीच दे कै आपा दिखलाय, आठ पहर का दाझड़ा मोपे सहया न जाए। सोई आंसू साजड़ा सोई लोक बिटाए, जो लोह लोइन चुए तो जानो हेत निहियाए। तब कबीर के हृदय का दर्द भी अपनी सारी वेधकता के साथ पाठक या श्रोता के मन पर वैसी ही गहरी लकीर खींचता है। दर्द की यह अतिशयता ही है, आराध्य के प्रति उनकी यह आकुल तड़प ही है, जो अपने आप कविता बन गई है। निरलंकृत किंतु महिमामयी, सरल किंतु पारदर्शी, शुक्ल जी ने स्वयं इस तथ्य को स्वीकार किया है कि कबीर ने नाथों सिद्धों के प्रभाव से शुष्क हुए हृदयों को सरस बनाया। तब क्यों उन्हें कबीर के इन उद्गारों को, जो कबीर की सर्जना में दूर दूर तक व्याप्त हैं, कविता कहने में संकोच होगा। जाहिर है कि इसके मूल में शुक्ल जी के वे पूर्वाग्रह ही हैं, जिनकी ओर हम संकेत कर चुके हैं। इन पूर्वाग्रहों के चलते ही कबीर की सर्जना का वह पहलू भी उनके द्वारा उपेक्षित हुआ है, जिसे भावात्मक रहस्यवाद कहते हैं। वे स्वतः उन्होंने ही रहस्यवाद के अपेक्षाकृत रुक्ष और जटिल रूपों से अलगाया था। इस भावात्मक रहस्यवाद के अंतर्गत जो कविता थी, वह भी उस रहस्यवाद के साथ साथ अनदेखी और उपेक्षित हो गई। मसलन अपने भावात्मक रहस्यवाद के अंतर्गत कबीर अधिकतर दाम्पत्य प्रेम के रूप में बांधते हुए अपनी बात कहते हैं। नैहर छोड़कर जाने की ललक अनेक पदों में व्यक्त हुई है। कभी अखियां इतना अलसा गई हैं कि सुहागिन पिया से सेज पर चलने को कह रही हैं। कभी चुनरिया प्रेम रस की बूंदों से भीग उठी है। कभी पिया को घर आने का आमंत्रण है कहने का मतलब यह है कि माधुर्य भक्ति का बड़ा ही सरस रूप कबीर के ये पद प्रस्तुत करते हैं। ऐसे ही पद मीरा के भी हैं, जिनमें प्रीतम के प्रति उनका माधुर्य भाव बड़ी कशिश के साथ मूर्त हुआ है। जाहिर है कि ये पद सामान्य स्तर के पद नहीं है, इनमें गहरी व्यंजना है। शुक्ल जी चूंकि भक्ति के इस रूप को पसंद नहीं करते, इस नाते उनकी उपेक्षा करते हैं या उस पर चलताऊ टिप्पणी करते हैं। ध्यान देने की बात यह है कि उन्होंने इस बात को रेखांकित किया है कि कबीर में माधुर्य भाव कुछ दूसरे ऐसे ही भक्तों की तुलना में मलिन या विलास कलुषित नहीं हुआ है, फिर भी उन्होंने उसे विशद करने योग्य नहीं समझा। यही शुक्ल जी के विवेचन की सीमा है। भक्ति जन्य उद्गारों और भावात्मक रहस्यवाद से संबंधित पदों के अलावा कबीर की सर्जना के अन्य आयाम भी हैं। उदाहरण के लिए उनकी योग और साधना परक वाणी, उनके दार्शनिक पद तथा उनकी सर्जना का वह रूप जहां कबीर समाज और उसकी विसंगतियों पर, सामाजिक धार्मिक पाखंडियों और पाखंडों पर वज्र प्रहार करते हैं, उनकी मखौल उड़ाते हैं, उन्हें चिकोटियां काटते हैं या फिर नीच की बातें करते हैं। कबीर की सर्जना के ये पहलू अपने अपने ढंग से महत्वपूर्ण हैं। इनके बारे में हम अपने पिछले निबंध में टिप्पणियां कर चुके हैं। बिना विस्तार में जाए हम कहना चाहेंगे कि रहस्यवाद के बारे में शुक्ल जी की आपत्तियां बुनियादी तौर पर सही हैं। रहस्यवाद जैसे किसी भी तत्व चिंतन से हमारी भी सहमत नहीं है। जीव और ब्रह्म का गोरख धंधा दर्शन की जमीन पर चले, परंतु उसके काव्य की जमीन पर आने और लाने के हिमायती हम भी नहीं हैं। कविता हमारे लेखे भी लोक जीवन की वस्तु है और हम भी उसे लोक जीवन के कार्य व्यापारों तथा अनुभूतियों तक सीमित रखने के पक्ष में हैं। ध्यान देने की बात बस इतनी है कि क्योंकि मध्यकाल का तमाम काव्य धार्मिक आध्यात्मिक ढांचे सांचे का काव्य है और रहस्य वृत्ति उसका एक महत्वपूर्ण पहलू है, अतएव उसकी अंतर्वस्तु से असहमत के बावजूद इतना और भी देखा जाना चाहिए कि अपने युग संदर्भों में इस रहस्यवाद की और रहस्यदर्शी कवियों भक्तों की ऐतिहासिक भूमिका क्या थी। जिस समय और समाज में ये संत और भक्त रच रहे थे, जी रहे थे, उस समाज के बारे में उनकी समझ क्या थी, उन्हें उससे कोई सरोकार था या नहीं, या वे हमेशा अनहद नाद ही सुना करते थे। अपने सामने यातना पा रहे मनुष्यता के दुखों दुख दर्दों के प्रति एकदम बेपरवाह थे, आदि आदि। और जब हम इस रहस्यवाद तथा इस इन मध्यकालीन रहस्यदर्शियों की इस जमीन से पड़ताल करते हैं, तो पाते हैं कि ये सुन समाधि जरूर लगाते थे, अनहद नाद भी सुनते थे, ऐसे सुरम में लोक में भी विचरण करते थे जहाँ बारहों मास बसंत छाया रहता है, हद को छोड़ बेहद तक को नापने की बात करते थे, परंतु अपने समय और समाज के प्रति कतई बेपरवाह नहीं थे। उसकी यातना का दंश दूसरे तमाम साधारण जनों की भांति खुद भी भोग चुके थे और भोग रहे थे। इनकी आंखें हमेशा भीतर ही नहीं देखती थी, बाहर भी उतने ही पैनेपन के साथ सक्रिय थे और सामाजिक विसंगतियों को पहचानने और उसे उखाड़ने में उतनी ही निर्मम भी थी। उनमें साधारण यातनाग्रस्त जन के प्रति गहरी करुणा का भाव था तथा यातना देने वालों के प्रति आक्रोश और विक्षोभ। स्वयं कबीर और नानक इसके उदाहरण हैं, अतएव उनके रहस्यवाद को कोरम कोर खारिज करने के बजाय ऐतिहासिक संदर्भों में परखने की जरूरत हो जाती है। डॉक्टर रामविलास शर्मा जो शुक्ल जी के दृष्टिकोण से के दृढ़ समर्थक हैं, इस बात को महत्वपूर्ण मानकर ही शुक्ल जी से आगे जाकर मध्यकालीन रहस्यवाद की इस ऐतिहासिक भूमिका को रेखांकित करते हैं और कहते हैं, किसी समय रहस्यवाद ने साहित्य और समाज में बड़ी क्रांतिकारी भूमिका पूरी की थी। मनुष्य में ब्रह्म दर्शन करके कवियों ने मनुष्य मात्र की समानता की घोषणा की थी। धर्म संप्रदाय वर्ण मत मतांतर आदि के भेदों का विरोध करके मानवता की प्रतिष्ठा की थी। पुरोहित वर्ग और देववाणी के दर्प से आतंकित न होकर उसने लोक भाषाओं को साहित्य के सिंहासन पर बिठाया था। दरबारों की रीतिबद्ध कविता के मुकाबले नए भावों विचारों और कलात्मक सौंदर्य से भारतीय काव्य को समृद्ध किया था। सवाल मध्यकालीन रहस्यवाद के इस पहलू को उभारने का है, इस नाते उसे खारिज कर देने का नहीं कि वह बाहर से आयातित है। यह भी सच है कि कबीर की सर्जना में ऐसा भी बहुत कुछ है जिसे शुक्ल जी ने बहुत सही तरीके से काव्य की कोट से बाहर माना है। अन्य दृष्टियों से उसका महत्व हो और वह है, परंतु उसे कविता जरूर नहीं कहा जा सकता। कबीर की दार्शनिक उक्तियां, उनकी युग परक वाणियां, उनकी उलटबासियां और अपने समय के समाज की विसंगतियों और उनके कर्ताओं पर कबीर के वज्र प्रहार, धर्म और धर्म के ठेकेदारों के पाखंड की उनकी भर्सना, पंडित काजी मुल्ला और मौलवी पर उनकी फक्तियां, उनकी नीत परक वाणी, यह सब और जो भी हो कविता की कोटिका नहीं है। इनमें तमाम कुछ सांप्रदायिक शिक्षा है और तमाम कुछ सपाट बयानी। कोरे विचार वे कितने भी उत्तम क्यों न हों, कविता नहीं होते। कविता गहन अनुभूति की बुनियाद पर ही रची जाती है। शुक्ल जी जब काव्य में जीवन के नाना कार्य व्यापारों के, मनुष्य की सुख दुखमयी जीवनानुभूतियों के चित्रण की बात करते हैं, कविता की बिंबधर्मिता पर बल देते हैं, तो वे कविता की सही छवि की ओर हमें मुखातिब करते हैं। कबीर ही नहीं, अन्य निर्गुण संतों के यहाँ इसीलिए हमें भक्ति जन्य गहरे उद्गारों के अलावा और कहीं कविता नहीं मिल पाती। कारण ये संत मानवीय क्रियाकलापों के वैविध्य को, जीवन और जगत के बहुआयामी रंग रूप को उस जीवन सजीव चित्रमयता के साथ पेश नहीं कर पाए हैं, जैसा कि सगुण भक्तों के यहाँ हमें मिलता है। सगुण भक्त की कविता और भक्त इसी नाते कविताई में निर्गुण संतों को बहुत पीछे छोड़ देते हैं। उनके यहाँ जीवन का कथन नहीं, उनकी चित्रमयी प्रस्तुति है। मनुष्य के राग विराग हैं, संसार का सौंदर्य है, उसकी कुरूपता है, उसके घात प्रतिघात हैं, भावों का बहुरंगी विधान है। वहाँ जो कुछ कहा गया है जीवन व्यापारों के चित्रण के माध्यम से, उसके बीच से कहा गया है। अतएव कबीर पर, विशेष रूप से उनकी कविता पर निर्णय लेने से पहले भावुकता से बचते हुए, उनके व्यक्तित्व को समग्र रूप से आंकते और थाहते हुए भी वस्तुपरक रहने की जरूरत है। जितनी दूर तक शुक्ल जी वस्तुपरक रह सके हैं, वे हमें स्वीकार हैं। जितनी दूर तक आचार्य द्विवेदी वस्तुपरक हैं, वे भी हमें स्वीकार हैं। परंतु जहाँ वे पूर्वाग्रह ग्रस्त हैं अथवा कबीर के भाव प्रशंसक, वे हमें स्वीकार नहीं है। अंततः कबीर की कविताई को परखते हुए और उस पर कोई भी राजनी करते हुए, हमें यह भी देखना चाहिए कि कबीर किस युग में जन्मे थे और किस युग में कार्यरत थे। कबीर का समय सूर तुलसी आज का समय नहीं था। कविता के कोई भी बड़े मान तब तक नहीं बने थे। भाषा का कोई भी मानक रूप तब तक सामने नहीं आया था। कबीर का भी सामान्य परिवेश नहीं था। उनसे उत्तम कविताई की अपेक्षा करने से पहले इन बातों पर भी विचार जरूरी होगा। बावजूद इसके, अपने समय से मुठभेड़ करते हुए फिर भी वे उभरे ही नहीं, अपने समय के पर अपने गहरे निशान छोड़ते हुए अपने सवालों के साथ उस पर छा गए। अपने भीतर को और अपने बाहर को उन्होंने समान शक्ति के साथ थाहा और उजागर किया। अपने समय में उनकी आवाज सबसे ऊंची और जानदार आवाज के रूप में सुनी और महसूस की गई। वे घिघियाते हुए नहीं जिए, समय और समाज को झकझोरते हुए, उनकी चुनौतियों के बीच उन्हें चुनौती देते हुए जिए। अपने समय से बहुत आगे के समय के प्रतिनिधि बनकर जिए। शास्त्रज्ञों और पंडितों ने उनका लोहा माना, वे आजीवन अग्निशिखा की भांति धधकते रहे। उन्होंने अपने मनुष्य होने को चरितार्थ किया। वे प्रेरणा स्रोत हैं उस सर्जना के, साधारण जन की वास्तविक मुक्ति जिसका साध्य रहा है।